शब्द से अर्थ का बोध होता है, शब्द सुनने के बाद अर्थ का बोध होता है, ये सब लोग जानते हैं। अब आप 53वीं कारिका से जो है ना, ये बताया जा रहा है कि शब्द अपने स्वरूप का पहले बोध कराता है, उसके बाद जो है ना अर्थ का भी बोध कराता है। इस तरह से शब्द में दो काम हो गया, एक स्वयं का बोध कराना और एक अर्थ का बोध कराना। अब 53वीं कारिका को देखिए कि यथा प्रयोक्तुः प्राग बुद्धिः शब्देषु एव प्रवर्तते व्यवसायो ग्रहीतॄणाम् एवं तेष्वेव जायते। शब्द के संदर्भ में दो व्यक्ति होते हैं, एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। इस कारिका में वक्ता के लिए प्रयोक्त्री शब्द का प्रयोग किया, यथा प्रयोक्तुः, प्रयोक्ता कौन हो गया, वक्ता हो गया, और श्रोता के लिए ग्रहित्री शब्द का प्रयोग हुआ है, व्यवसायो ग्रहित्री नाम। तो वक्ता और श्रोता दोनों को सामने रख करके इस कारिका में बताया गया है कि यथा प्रयोक्तु प्राग बुद्धि ही शब्देषु एव प्रवर्तते, कि प्रयोक्ता जो है, प्रयोग करने वाला वक्ता जो है, उसकी बुद्धि में पहले जो है ना शब्द आता है और फिर उसके बाद जो है ना अर्थ आता है। उसी तरह से व्यवसायो ग्रहीतॄणाम एवं तेष्वेव जायते। व्यवसायः, व्यवसाय का अर्थ करना है ज्ञानम, कि ग्रहीतॄणाम एवं एव व्यवसायः, ग्रहीतॄणाम माने श्रोतॄणाम एवं एव ज्ञानम, इसी तरह से ज्ञान होता है। किस तरह से, कि जैसे वक्ता के मन में पहले शब्द आता है फिर अर्थ आता है, उसी तरह से श्रोता को भी पहले शब्द का ज्ञान होता है और उसके बाद अर्थ का ज्ञान होता है। ये कारिका का अर्थ हुआ। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आप देखिए, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलने के लिए क्या चाहिए, बोलने में आप क्या करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं ना। तो शब्द का उच्चारण करने से पहले आपको शब्द जो है सोचना पड़ता है कि हमें इस शब्द का उच्चारण, हमें राम नाम का जाप करना है, तो जब ये मन में आता है उसके बाद ही तो आप राम 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 करते हैं ना। तो उच्चारण से पहले शब्द ही आता है, और जब शब्द आता है, अच्छा वो शब्द कैसा आता है, तो अर्थ विशिष्ट शब्द आता है, अर्थ से युक्त शब्द आता है। और अर्थ माने अर्थ की विवक्षा में जिस अर्थ को हम बताना चाहते हैं, उस बताने के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है, उस शब्द को पहले हम सोचते हैं और फिर हम उस अर्थ को बताने के लिए उस शब्द का उच्चारण करते हैं। ऐसे ही श्रोता भी जो है क्या करता है, कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा पहले शब्द को सुनता है, शब्द का को जानता है, और उसके बाद जो है वह अर्थ को भी जानता है। तो वक्ता और श्रोता दोनों की दृष्टि में पहले शब्द है, उसके बाद अर्थ है। और ऐसा दिखाया है इसलिए क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि शब्द जो है अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ ही अर्थ को बताता है। ऐसा नहीं है कि अपने स्वरूप को नहीं बताएगा और अर्थ का बोध करा देगा, ऐसा संभव नहीं है। इसी को दृष्टांत के द्वारा बताया गया कि जैसे वक्ता बोलने से पहले शब्द को सोचता है, फिर अर्थ को बताने के लिए शब्द का प्रयोग करता है, उसी तरह तो क्या हुआ, पहले शब्द का ज्ञान हुआ और बाद में अर्थ का बोध कराने के लिए शब्द का उच्चारण हुआ। उसी तरह से श्रोता के लिए भी यही है कि पहले शब्द सुनता है, शब्द को जानता है, उसके बाद अर्थ को वह जानता है। इस तरह से 53वीं कारिका को पढ़ा आपने। अब 54वीं कारिका देखते हैं। अर्थोपसर्जनी भूतान अभिधेयेषु केषुचित् चरितार्थान परार्थत्वात् न लोकः प्रतिपद्यते। अब इस कारिका को समझने से पहले आपको थोड़ी सी भूमिका समझनी होगी। अभी पिछली कारिकाओं में ये बताया गया कि शब्द का अर्थ जो है ना, वो अर्थ तो होता ही है और शब्द का अर्थ शब्द भी होता है। अर्थ किसको कहते हैं, जो बोध्य होता है, और शब्द किसको कहते हैं, जो बोधक होता है। तो जो बोध करावे वह हो गया शब्द, और जिसका बोध होवे वह हो गया अर्थ। तो अर्थ को बोध्य कहते हैं और शब्द को बोधक कहते हैं। क्योंकि शब्द जो है अपना भी बोध कराता है और अर्थ का भी बोध कराता है, तो शब्द के दो रूप हो गए, एक बोध्य रूप भी हुआ और एक बोधक रूप भी हुआ। तो शब्द के दोनों बोध्य होते हैं, अर्थ भी बोध्य होता है और शब्द भी बोध्य होता है। इसीलिए आपने पहले पढ़ा होगा कभी कि प्रातिपदिकार्थ जो है ना वो 6 प्रकार के होते हैं, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक और शब्द। तो शब्द को भी प्रातिपदिकार्थ माना गया है। अब जैसे घट प्रातिपदिक है, तो घट प्रातिपदिक का अर्थ घड़ा भी है और घट शब्द भी है, दोनों ही जो है ना उसका अर्थ है। ये तो क्लियर हुआ अभी कि शब्द का अर्थ शब्द भी है और शब्द का अर्थ अर्थ भी है। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि शब्द का बोध्य शब्द भी है और शब्द का बोध्य अर्थ भी है। अब जैसे गो शब्द को ले लीजिए या घट शब्द को ले लीजिए, अगर गो शब्द को लेंगे उसका अर्थ होगा कि गो शब्दत्व विशिष्ट गो, क्या अर्थ होगा, गो शब्दत्व विशिष्ट गो। और घट शब्द ले लेंगे तो क्या अर्थ होगा, घट शब्दत्व विशिष्ट घट। अब यहाँ गौर करिए कि गो शब्दत्व विशिष्ट गो और घट शब्दत्व विशिष्ट घट, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं ना, शब्द भी आ रहा है और अर्थ भी आ रहा है, क्योंकि दोनों बोध्य हैं। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब शब्द का अर्थ जो है शब्द भी है और अर्थ भी है, तो व्यवहार में देखा जाता है कि हम कहते हैं कि गाम आनय, तो वहाँ पर गाम शब्द को नहीं लाता है बल्कि गाम अर्थ को लाया जाता है। गाम का अर्थ क्या हुआ, गाय को लाओ, तो गाय को पकड़ करके लाया जाता है। गाम आनय कहने से गो शब्द को तो नहीं लाते हैं पकड़ करके, गो अर्थ को लाते हैं। तो आप जब कहेंगे कि शब्द जो है शब्द का अर्थ शब्द भी है और शब्द का अर्थ अर्थ भी है, तो व्यवहार में तो ये फिट नहीं बैठता है। व्यवहार में तो शब्द का अर्थ केवल अर्थ ही लिया जाता है, शब्द का अर्थ शब्द तो लिया नहीं जाता है। इसी बात का जवाब जो है इस 54वीं कारिका में दिया कि अर्थ उपसर्जनी भूतान, कि अर्थ का जो उपसर्जनी भूत है, उपसर्जनी भूत मतलब विशेषणी भूत, माने विशेषण के रूप में, माने शब्द के जो दो बोध्य हो गए शब्द और अर्थ, उसमें अर्थ जो है वह विशेष्य होता है और शब्द जो है वह विशेषण होता है। तो विशेषण से युक्त विशेष्य होता है। तो यहाँ विशेषण शब्द के लिए उपसर्जन शब्द का प्रयोग हुआ है, ताकि शब्द जो होता है ना बोध्य वह उपसर्जनी भूत होता है, विशेषणी भूत होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि गो का अर्थ होता है गो शब्दत्व विशिष्ट गो। अब यहाँ पर लास्ट वाला जो गो है वह है अर्थ, और शुरू वाला जो है गो शब्दत्व वह हो गया गो शब्दत्व में जो गो शब्द है वह हो गया शब्द। तो ये जो गो में गो शब्दत्व क्या है, विशेषण के रूप में लगा हुआ है। ऐसे ही घट शब्दत्व विशिष्ट घट, इसमें घट जो अर्थ है उसमें वह विशेष है और उसका विशेषण कौन है, घट शब्दत्व। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि अर्थ उपसर्जनी भूतान, माने अर्थ जो है उसका उपसर्जनी भूत जो होता है वह होता है शब्द, विशेषण के रूप में होता है। अभिधेयेषु केषुचित, केषुचित अभिधेयेषु, केषुचित माने कुछ, अभिधेयेषु माने अर्थेषु, कुछ अर्थों में, चरितार्थत्वात् वह चरितार्थ होता है। कैसे चरितार्थ होता है विशेषण, अब जैसे देखिए अगर हम कहते हैं कि नील कमल, तो नील कमल में कमल हो गया विशेष्य और नील हो गया विशेषण। अब ये नील विशेषण कैसे चरितार्थ होता है, क्योंकि श्वेत कमल है और जो है लाल कमल, इन सबों की व्यावृत्ति करके नील विशेषण चरितार्थ हो जाता है। व्यावृत्ति करके मतलब उसको हटा करके, नील कमल अगर कहेंगे तो उसे नील कमल ही समझ में आएगा, लाल कमल या श्वेत कमल समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नील जो विशेषण है उसने, विशेषण ने श्वेत कमल को वहां से हटा दिया अर्थ के रूप में, और लाल कमल को वहां से अर्थ रूप में हटा दिया। ऐसे ही शब्द जो है वह विशेषण के रूप में भासता है और अर्थ जो है वह विशेष के रूप में भासता है। तो शब्द जो विशेषण है वह अन्य विशेषणों को निवृत्त करा देता है। अब जैसे घटत्व विशिष्ट घट है, तो इसमें अगर विशेषण लगा दिया हमने घटत्व, तो क्या होगा कि अन्य विशेषणों से युक्त घट को नहीं समझा जाएगा, केवल घटत्व से विशिष्ट घट को ही समझा जाएगा। तो अन्य विशेषणों को कोई निवृत्ति कराने के लिए ये जो विशेषण होता है वो चरितार्थ हो जाता है, माने उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो जाए उसे हम कहते हैं चरितार्थ। तो अर्थ का जो उपसर्जनी भूत है विशेषण शब्द, वह केसुचित अविधेयेषु, माने कुछ अविधेय का बोध कराने के लिए चरितार्थान चरितार्थ रहते हैं, उसके प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए परार्थत्वात् वह विशेषण जो है वह हमेशा परार्थ होता है, माने परोपकार के लिए होता है, वह स्वार्थ नहीं होता। परोप यहाँ किसका परोपकार करता है विशेषण? तो अपने विशेष का परोपकार करता है, विशेष को जानने में सहायता करता है। तो परार्थत्वात् न लोक पद्यते, इसीलिए लोक में, लोक व्यवहार में उसकी प्रतिपत्ति अलग से नहीं होती है, माने क्रिया में उसका अन्वय नहीं होता। जैसे गाम आनय कहते हैं, तो यहाँ पर क्रिया कौन है? आनयन क्रिया है। इस आनयन क्रिया में गो अर्थ का ही अन्वय करता है, लोक व्यवहार में किया जाता है अन्वय, गो शब्द का अन्वय नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि गो शब्द जो है वह विशेषण के रूप में है और वह अन्य विशेषणों को व्यावृत्त करने के लिए चरितार्थ है, उसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। और जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसका अन्वय क्रिया में नहीं किया जाता है। इसीलिए ये जो सब प्रश्न किया गया था कि शब्द और अर्थ अगर दोनों बोध्य हैं तो व्यवहार में ये फिट नहीं बैठता है, व्यवहार में केवल क्रिया में अन्वय जो है अर्थ का ही होता है, शब्द का नहीं होता है, तो उसके लिए बताया कि क्यों नहीं होता है। तो क्योंकि शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है और उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है अन्य विशेषण की निवृत्ति कराने में, और जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया तो उसकी उसका जो है क्रिया में अन्वय नहीं करते हैं। हाँ, जो विशेष है अर्थ रूप विशेष है, उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है तो उसका क्रिया में अन्वय हो जाएगा। इस तरह से 54वीं कारिका आपने पढ़ी, अब 55वीं कारिका भी पढ़ते हैं कि ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्व शब्दानां एते पृथक इव स्थिते। ऐसा है कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें ग्राह्यत्व होता है और कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि ग्राहकत्व होता है। ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व समझते हैं कि नहीं? जिसका ग्रहण किया जाए वह हो गया ग्राह्य, और जिस जो ग्रहण करावे उस वह हो गया ग्राहक। अब जैसे देखिए घट आदि जो है वह है ग्राह्य, और चक्षु आदि इंद्रिय जो है वह क्या है? ग्राहक। आँख से आँख को देखते हैं क्या? नहीं, आँख से दूसरी वस्तु को देखते हैं, इसलिए चक्षु आदि इंद्रिय जो है वह ग्राहक कहलाता है, और घट आदि जो है वह ग्राह्य कहलाता है। तो घट आदि में केवल ग्राह्यत्व शक्ति होती है और चक्षु आदि इंद्रिय में केवल ग्राहकत्व शक्ति होती है, लेकिन तेजस ऐसा होता है, बहनी अग्नि ऐसी होती है जिसमें कि दोनों शक्ति होती है, ग्राह्यत्व शक्ति भी और ग्राहकत्व शक्ति भी। ग्राह्यत्व शक्ति से क्या होता है कि अग्नि जब जलती है तो अग्नि का ज्ञान होता है, और ग्राहकत्व शक्ति से क्या होता है कि अग्नि के सामने जो घटपटारी रखा रहता है उसका ज्ञान होता है। तो अग्नि जो है उसमें दोनों शक्तियां जैसे रहती हैं, ग्राह्यत्व शक्ति और ग्राहकत्व शक्ति, जैसे अग्नि स्वयं का भी ज्ञान कराती है और अपने पास वाला जो वस्तु है उसका भी ज्ञान कराती है, उसी तरह से तथैव सर्व शब्दानां, इसी तरह से सभी शब्दों में ये एते द्वे शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ कौन, ग्राह्यत्व शक्ति और ग्राहकत्व शक्ति, पृथक इव स्थिते, अलग अलग दोनों शक्तियाँ इसमें विद्यमान होती हैं। तो ग्राह्यत्व शक्ति से क्या होता है कि शब्द स्वयं का बोध कराता है, और ग्राहकत्व शक्ति से शब्द जो है वह अर्थ का बोध कराता है। तो यहाँ पर मतलब अग्नि का दृष्टांत दे करके शब्द को बताया गया कि अग्नि में जिस तरह से ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व शक्ति होती है, उसी तरह से शब्द में भी ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व शक्ति होती है। ग्राह्यत्व शक्ति से जैसे अग्नि स्वयं को दिखाती है, और ग्राहकत्व शक्ति से जैसे अग्नि पास वाले को दिखाती है, उसी तरह से ग्राह्यत्व शक्ति से शब्द स्वयं को का बोध कराता है, और ग्राहकत्व शक्ति से शब्द जो है वह अर्थ का बोध कराता है। इस तरह से यहाँ पर अग्नि का दृष्टांत दे करके आपको समझाया गया। आज जो है हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, फिर अगले पाठ में 56वीं कारिका से पढ़ेंगे। ठीक।